मुख्य समाचारों में, न्यू साउथ वेल्स में नर्सों और मिडवाइफ्स ने सरकारी अस्पतालों में कर्मचारियों की कमी को लेकर राज्यव्यापी हड़ताल के दौरान नौकरी छोड़ी। संयुक्त राष्ट्र महासचिव द्वारा यूक्रेन और रूस के विदेश नेताओं के साथ बातचीत और भारतीय महिला क्रिकेट टीम कप्तान मिताली राज ने बनाया एक कीर्तिमान। नमस्कार, लीजिए प्रस्तुत हैं समाचार विस्तार में अनीता बरार के साथ। रूस का आक्रमण हो सकता है, इसकी चेतावनी के बाद एकजुटता दिखाने और यूरोप में युद्ध को टालने की मदद के लिए जर्मन चांसलर ओलाफ शॉल्ज यूक्रेन के राष्ट्रपति जेलेंस्की के साथ बातचीत के लिए कीव पहुंचे हैं। ये यात्रा वार्ता के माध्यम से संकट को कम करने और यदि रूस यूक्रेन पर हमला करता है तो रूस पर लगे प्रतिबंधों के खतरों के प्रयासों का एक हिस्सा है। चांसलर शॉल्ज का कहना है कि अगर रूस फिर से यूक्रेन की क्षेत्रीय अखंडता का उल्लंघन करता है तो उसके लिए दूरगामी प्रतिबंध होंगे।
For the German government, it is clear that further military aggression against Ukraine would have serious political, economic and geostrategic consequences for Russia, and I will underline this in Moscow tomorrow.
श्री शॉल्ज कल रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन से मिलने के लिए मॉस्को के लिए उड़ान भरेंगे। दिसंबर में पदभार ग्रहण करने के बाद जर्मन चांसलर ने पिछले एक सप्ताह में यूक्रेन संकट में अपनी भागीदारी तेज कर दी है। आलोचकों ने उन पर दशकों से यूरोप के सबसे खराब सुरक्षा संकटों में से ये एक पर नेतृत्व की कमी का आरोप लगाया था। इस बीच ऑस्ट्रेलियन सरकार को चेतावनी दी गई है कि यूक्रेन की सीमा पर रूसी आक्रमण को रोकने में स्वयं या पश्चिम की ओर से कोई भी विफलता चीन जैसे निरंकुश शासक को प्रोत्साहित करेगी। यूक्रेनियन स्टडीज के प्रोफेसर मार्को पाइलिशिन का कहना है कि रूसी आक्रमण का इंडो पैसिफिक क्षेत्र में सुरक्षा प्रभाव प्रत्यक्ष तौर पर पड़ेगा, जैसे कि चीन का ताइवान की ओर बढ़ना। प्रोफेसर ने कहा कि रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन को रोकने के लिए समान विचारधारा वाले देशों के साथ काम करना ऑस्ट्रेलिया के मुख्य सुरक्षा हित में है और ये भी सुनिश्चित हो कि संकट बढ़े नहीं और यूक्रेन की संप्रभुता छिने नहीं। संयुक्त राष्ट्र महासचिव एंटोनियो गुतरेज ने रूस और यूक्रेन के बीच संभावित संघर्षों को कम करने की उम्मीद में दोनों देशों के विदेश मंत्रियों के साथ बात की है। रूसी सरकार यूक्रेन पर आक्रमण करने के किसी भी इरादे से इनकार करना जारी रखती है, लेकिन उसे चिंता है कि नाटो गठबंधन के साथ यूक्रेन के बढ़ते संबंधों के चलते यूक्रेन को रूस पर लक्षित नाटो मिसाइल्स के लिए लॉन्च पैड बनाया जा सकता है। संयुक्त राज्य अमेरिका सरकार ने यूक्रेन पर रूस के आक्रमण की चेतावनी दी है। यूएन प्रवक्ता स्टीफन दुजारिक का कहना है कि कूटनीति के अलावा कोई विकल्प नहीं है।
I think what the Secretary General expressed to both foreign ministers was his serious concern over the heightened tensions around Ukraine. He welcomed the ongoing diplomatic discussions to diffuse those tensions and underlined yet again the fact that there is no alternative to diplomacy.
New South Wales में 16 COVID-19 मौतें और 8201 नए मामले दर्ज किए गए हैं। अस्पताल में भर्ती होने वाली संख्या भी घटकर 1583 रह गई है, जबकि 96 लोग गहन देखभाल में हैं। विक्टोरिया में 8612 नए कोरोना वायरस संक्रमण और 20 मौतों की रिपोर्ट है। विक्टोरिया के अस्पतालों में 441 लोग हैं, 67 गहन देखभाल में हैं और 14 वेंटिलेटर पर हैं। तस्मानिया में कोविड-19 के 513 नए मामले दर्ज किए गए, वहां कोई भी नई मौत नहीं हुई है। पश्चिमी ऑस्ट्रेलिया अपने कोविड-19 सीमा प्रतिबंधों को हटाएगा, इस चल रही अनिश्चितता के बीच क्वांटास लंदन के लिए अपनी सीधी उड़ानों के लिए डार्विन एयरपोर्ट का उपयोग करना जारी रखेगा। जब पिछले साल नवंबर में अंतर्राष्ट्रीय यात्रा फिर से शुरू हुई तब क्वांटास एयरलाइन ने अस्थायी रूप से अपनी पर्थ से लंदन सेवा के लिए डार्विन से प्रस्थान किया। पर्थ सेवा अप्रैल में वापस आने वाली थी, लेकिन वेस्टर्न ऑस्ट्रेलिया के प्रीमियर मार्क मैकगवन द्वारा राज्य को फिर से खोलने की तारीख की पुष्टि अभी करना बाकी है। क्वांटस का कहना है कि ये इस साल कम से कम जून तक डार्विन से ही अपनी उड़ानों को जारी रखेगा। सिडनी से लंदन की सेवा भी सिंगापुर के बजाय डार्विन से होकर गुजरेगी। विभिन्न मीडिया आउटलेट्स रिपोर्ट कर रहे हैं कि लेबर सेनेटर किम्बर्ली कीचिंग ने एक धनी चीनी ऑस्ट्रेलियन व्यवसायी पर आरोप लगाने के लिए संसदीय विशेषाधिकार का उपयोग किया है और अगले चुनाव में राजनीतिक उम्मीदवारों को समर्थन देने के असफल प्रयास के पीछे एक राजनीतिक दानकर्ता यानी पॉलिटिकल डोनर है। दावे आए सेनेट के अनुमानों की सुनवाई के दौरान, जहां सुश्री कीचिंग ने एजीओ बॉस माइक बर्जर्स से सवाल किया। श्री बर्जर्स ने समिति से कहा कि वो इस मामले पर सार्वजनिक रूप से चर्चा नहीं करेंगे।
Senator, as I said before, I will not comment on speculation of who is and who isn't targets in general or in specifically as you're asking me there. I think it's unfair that you ask me that question in public.
फेडरल सरकार हिंसक या गंभीर यौन अपराधों के दोषी विदेशी मूल के अपराधियों को शीघ्रता से निर्वासित यानी डिपोर्ट करने के लिए काम कर रही है। गठबंधन की योजना संसद में कानून पेश करने की है, जिससे प्रवास चरित्र परीक्षण कानूनों यानी माइग्रेशन करेक्टर टेस्ट लॉज में एक खामी को बंद किया जा सके। प्रस्तावित संशोधन सरकार को गैर नागरिकों के वीजा को अस्वीकार करने या रद्द करने की अनुमति देगा जिन्हें गंभीर अपराधों के लिए दोषी ठहराया गया है और कम से कम 2 साल की जेल की सजा सुनाई गई है या जिन्होंने 12 महीनों से कम जेल की सजा काटी है और उन्हें समुदाय के लिए जोखिम माना जाता है। फेडरल इमिग्रेशन मंत्री एलेक्स हॉक ने सेवन नेटवर्क को बताया कि सरकार को और अधिक लोगों को निर्वासित यानी डिपोर्ट करने के लिए अधिक अधिकारों की आवश्यकता है।
We're the first government that's deported 10,000 serious criminals. We've cancelled their visas. We've got them offshore, overseas, never to come back. And we need more power to do more of it because there are several laws that are inadequate to capture serious sexual and violent offending.
इन अपराधों में शामिल हैं हिंसक और यौन अपराध, व्यक्तिगत सुरक्षा आदेशों का उल्लंघन करना, जैसे कि गिरफ्तार किए गए हिंसा के आदेश, हथियारों का उपयोग करना या रखना, या इनमें से किसी भी अपराध में सहायता करना। न्यू साउथ वेल्स में हजारों सार्वजनिक अस्पताल की नर्सें ये कहते हुए काम को छोड़कर जा रही हैं कि वे मरीजों को वो देखभाल देने के लिए बहुत परेशानी में हैं और अब ये संभव नहीं हो पा रहा। उन्हें वो सब नहीं मिल रहा जिसकी वो हकदार हैं, खासकर इस महामारी के दौरान। आज की कार्रवाई में लगभग 150 सार्वजनिक अस्पताल प्रभावित होंगे, जिनमें मरीजों की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए कुछ ही कर्मचारी मौजूद हैं। सिडनी के दक्षिण पश्चिम में एक सार्वजनिक अस्पताल की इस पंजीकृत नर्स का कहना है कि रोगियों की सेवा के लिए बहुत ही कम नर्स स्टाफ यानी रोगियों और नर्सों के बीच ये असंगत अनुपात ही उसकी मुख्य चिंता है, क्योंकि सिडनी के कुछ क्षेत्रों में नर्स और रोगियों का अनुपात दूसरों की तुलना में अधिक है।
We find that discriminatory. We don't want to have a disparity in the nursing skills. They're all the same patient. They deserve the best quality of care. And we are advocating that the government should do the right thing by giving us the mandate of 1-4, all the states. Regardless of wherever you work, we want 1-4 as the parity in all the nursing ratios. And that's what we're essentially we're asking for.
और भारत में पिछले 24 घंटों में कोरोना वायरस के कुल 27,409 नए मामले सामने आए। भारत में कोविड-19 केसों में 19.6% की कमी दिखती है। इससे पहले 1 जनवरी 2022 को 27,553 नए मामले आए थे। अब इसके साथ ही देश में अब तक कुल कोविड संक्रमितों की संख्या बढ़कर अब 4,26,65,534 हो गई है। और अब बात ऑस्ट्रेलियन डॉलर की। ऑस्ट्रेलिया का एक डॉलर अमेरिका के 71 सेंट और भारत के 53.99 रुपए के बराबर है। खेल समाचारों में, न्यूजीलैंड के खिलाफ दूसरे महिला वनडे मैच में भारतीय महिला क्रिकेट टीम कप्तान मिताली राज ने एक बड़ा कीर्तिमान अपने नाम किया है और इसके साथ ही वो महिला क्रिकेट दुनिया में बेस्ट कप्तान के रूप में भी जानी जाएंगी। दूसरे वनडे मैच में मिताली ने अपने वनडे करियर का 61वां अर्धशतक बनाया और 66 रन पर वो नाबाद रहीं। अपनी इस अर्धशतकीय पारी के दौरान मिताली ने महिला वनडे में बतौर कप्तान 5000 रन पूरे किए और इससे वो महिला क्रिकेट में कप्तान के तौर पर 5000 रन बनाने वाली पहली कप्तान बन गई हैं। कप्तान के तौर पर मिताली ने अब तक कुल 5030 रन बना लिए हैं। मौसम विभाग से मिली जानकारी के अनुसार कल यानी बुधवार को पर्थ में बहुत अधिक गर्मी रहेगी, धूप रहेगी। अधिकतम तापमान 38 डिग्री सेल्सियस, न्यूनतम 24 डिग्री। एडिलेड में एक दो बौछारें, अधिकतम तापमान 26 डिग्री, न्यूनतम 20 डिग्री। मेलबर्न में देर तक बौछारों या तूफान की संभावना, अधिकतम तापमान 30 डिग्री, न्यूनतम 16 डिग्री। होबार्ट में बौछारों की संभावना, अधिकतम तापमान 25 डिग्री, न्यूनतम 14 डिग्री। कैनबरा में मुख्यतः धूप रहेगी, अधिकतम तापमान 29 डिग्री, न्यूनतम 13 डिग्री। सिडनी में आंशिक रूप से बादल, अधिकतम तापमान 26 डिग्री, न्यूनतम 19 डिग्री। ब्रिस्बेन में एक दो बौछारें, अधिकतम तापमान 28 डिग्री, न्यूनतम 20 डिग्री। और डार्विन में धूप रहेगी, बौछारों की संभावना, अधिकतम तापमान 33 डिग्री सेल्सियस, न्यूनतम 25 डिग्री सेल्सियस। और इसी के साथ समाचार समाप्त हुए। SBS रेडियो से डाउनलोड करने के लिए आपका धन्यवाद। हमारा पूरा कार्यक्रम आप कैसे सुने, इसके लिए sbs.com.au/hindi पर जाएं।